ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हरे 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में तात्कालिक इस चार दिवसीय प्रवचन के सत्र में श्री नर हरि स्वामी द्वारा विरचित बोध सार का एक अध्याय उपदेश षोडशी पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें मात्र 16 श्लोक हैं। आज सिंहावलोकन बहुत ज्यादा करेंगे नहीं, सिंहावलोकन समझ गए ना, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि कल तक 8 या 9 जरा सा टच किए थे और आज 7 श्लोक पूरे करने हैं। तो यही बताया कि यदि लोग आपको झूठ मूठ का भी पंडित कह देवे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरी असली में आप आत्मज्ञानी बन जाओ, पंडित हो जाओ, तो वो प्रसन्नता कितनी गुना होगी। और देखा जाए कि हम पंडित झूठ मूठ का नहीं कहा जा रहा है, सचमुच का पंडित्यपन है, आत्मज्ञान स्वरूप मेरा अपना स्वरूप ही है, क्योंकि जितनी भी स्फूर्ति हो रही है, स्फुरण रूप हो रहा है, वह सारी स्फुरणा मेरी ही है, क्योंकि मैं चित्त स्वरूपता है। मेरा स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप है। और जितना भी ज्ञान हो रहा है, उन ज्ञान के रूप में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। जब ऐसा बोध हो जाता है तो कहां संसार, कहां दूसरा, कहां माया और उसके द्वारा किया गया बंधन आवरण और विक्षेप कहीं नहीं रहता है। कहते हैं जब चैतन्य का जब संयोग होता है, चैतन्य कौन हूं? मैं हूं। और जड़ है इंद्रियां, तो इंद्रियों का उस चिदाभास रूप चैतन्य, किसके साथ है? चिदाभास रूप चैतन्य के साथ जब संबंध होता है ज्ञानेन्द्रियों का, तो उसमें ज्ञातृत्व आता है। क्या जाएगा? ज्ञातापन। यदि चिदाभास रूप कर्म इंद्रियों का संयोग होगा तो उसमें कर्तृत्व आ जाएगा, और अंतःकरण का यदि संयोग हो गया तो उसमें भोक्तृत्व आ जाएगा। लेकिन ये चाहे कर्तृत्व रूप में होवे, चाहे भोक्तृत्व रूप में होवे, अथवा ज्ञातृत्व रूप में होवे, जितनी भी ये स्फुरणाएं हो रही हैं, स्वकियानी, यह सारी स्फुरणाएं आपकी अपनी ही है। ते मेरी ही अपनी स्फुरणति को देख करके मगिर भूत्वा विलोकय, इन सब स्फुरणाओं में अपने आप को देख करके मगिर स्वरूप होकर के उनके साक्षी बन करके तुम उनको देखो, इनका तुम अनुभव करो। जैसे बिजली है, बिजली को ही देखना है तो चाहे बिजली की स्फुरणा प्रकाशमय रूप में होवे, अथवा बिजली की स्फुरणा पंखे के गति रूप में होवे, अथवा बिजली की स्फुरणा हीटर के उष्मा रूप में होवे अथवा उसी बिजली की सुरंगा इस माइक में आवाज का संवर्धन आवाज को जो बढ़ा रहा है उसके रूप में होवे, लेकिन सब रूपों में व्यक्ति किसकी हो रही है? विद्युत की हो रही है ना। तो ज्ञातृत्व रूप में, कर्तृत्व रूप में, भोक्तृत्व रूप में जो भी स्फुरणा हो रही है वह सारी स्फुरणाएं स्वकीयानी स्फुरणानी, वह सारी स्फुरणाएं तुम्हारी अपनी ही तो है, चिद्रूप आत्मा की तो स्फुरणाएं हैं। तू तो मगई के समान है। किसके समान है? एक मगई के समान है, स्वयं प्रकाश चैतन्य मात्र स्वरूप होकर के इन सारी वृत्तियों में अपने आप को देखते हुए तुम आनंदित रहो, तुम आनंदित रहो। यहां तक अपने स्वरूप का उन्होंने अनुभव कराया। अब आगे दसवें श्लोक पर हम लोग विचार करते हैं। परस्परम विज्ञाता जागृत स्वप्न सुसुप्तय त्वया तिस्त्र स्त्रियो भुक्त्वा तुरीयाम सुंदरीम भज। देखो, परस्परम अविज्ञाता, एक दूसरे को न जानने वाली क्या है? तिस्त्र स्त्रियां, ये तीन स्त्रियां हैं जो एक दूसरे से कोई कांटेक्ट रखती नहीं है, एक दूसरे को मुख देखना पसंद करती नहीं है। आजकल ऐसे ही हो गया है, बहुत बड़े घरों में मैंने देखा है, यदि एक भाई की बीवी ऊपर रहती है, ऊपर माने ऊपर मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, और छोटे भाई की बीवी ग्राउंड फ्लोर पर रहती है, और अंदर से जीना एक ही है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग से कोई मतलब है। यहां फ्लैट सिस्टम नहीं है, किसी का अपने का दो मंजिले का मकान है, और जीना भी कहां से? अंदर से ही है, घर के भीतर से नहीं, जिसके ग्राउंड क्या बोलते हैं डुप्लेक्स टाइप है, डुप्लेक्स है, और डुप्लेक्स भी क्या हो जो आजकल बंगलो टाइप बने हैं, तो ऊपर एक भाई का बंटवारा होगा, नीचे दूसरे भाई का बंटवारा होगा। लेकिन सही बताऊं, मैं गया इसे घरों में भोजन करने, लेकिन दोनों की पत्नियां महीने भर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाती हैं। वो अपनी जिंदगी में मस्त, तो अपनी जिंदगी में मस्त, किसी को किसी का दर्शन होता नहीं है। सच बता रहा हूं, ये आज जगत की, अरे उनकी तो बात छोड़ दो, आजकल बच्चों की मां, बच्चों के साथ भी यही स्थिति है। बच्चा जब सोता है बाप चला जाता है ड्यूटी पे, और जब ड्यूटी से वापस आता है तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। बाप बेटे से मुलाकात हुए भी महीनों हो जाते हैं, कई घरों में हमें देखे हैं। सही है, गलत बताओ भाई? तो ये तीन जो स्त्रियां हैं, तीसरा स्त्रियां, ये जो तीन स्त्रियां हैं, परस्परम अविज्ञाता, एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है? अननोन है, जानी नहीं जाती हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती नहीं है। ये तीन स्त्रियां कौन है? जागृत, स्वप्न और सुसुप्तय। त्वया भुक्ता, अभी तक तूने इन तीन स्त्रियों का ही भोग हो गए हो, तीनों स्त्रियों के साथ ही अमर करते रहते हो। अभी हम किस स्त्री के साथ निवास कर रहे हैं? जागृत रूपी स्त्री के साथ रमण कर रहे हैं। अभी थोड़े देर के लिए सोएंगे तो किस स्त्री के साथ चले जाएंगे? स्वप्न वाली स्त्री के साथ है, थोड़ा देर उसके साथ है, हंसी खेल मनोरंजन करेंगे। इसके बाद किसके घर में चले जाएंगे? सुसुप्ति वाली स्त्री के साथ रमण करना शुरू कर देंगे। हम अभी तक तीन ही स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, लेकिन भाई एक चौथी भी स्त्री है, जिस स्त्री का किसी के साथ विरोध है ही नहीं, वह तीनों से मिलजुल के रहती है, अब बड़े प्यास रहती है, नहीं रहती, जागृत में भी वो रहती है, स्वप्न में भी वो रहती है, और कहाँ रहती है? सुसुप्ति में भी रहती है। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, किसी से कोई निंदा चुगली है ही नहीं। वह कौन सी स्त्री है? तुरीयाम। अरे भाई बहुत भोग लिए इन लड़ाई करने वाली लड़की ओ स्त्रियों के साथ, अब तो तुरीयाम सुंदरीम भज, वो जो चौथी तुम्हारी अपनी पत्नी है, कौन सी? तुरीया आत्मरूपी पत्नी है, बड़ी सुंदरी है, सुंदरी माने एक बार उससे मिल लो ना तो सच बताओ इतना आनंद की प्राप्ति हो जाती है कि सारे तीनों स्त्रियों के सुख तुम्हारे लिए क्या पड़ जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। अब उस सुंदरी का तुम भजन करो, भजन माने तुम चिंतन करो, तुम उसका भोग लो, उसमें तुम सुखी पूर्वक रह जाओ। यदि उसके साथ एक बार तुम्हारा निवास हो गया तो ये सारा संसार का रस अपने आप में फीका हो जाएगा। इसलिए अब तीन स्त्रियों की आसक्ति को छोड़ो, जो सबके साथ मिलजुल करके एक रूप रहती है, जो कभी किसी के साथ बगावत लगाई करती क्या, उसको क्रोध को भी सत्ता देती है, लोभ को भी सत्ता देती, किसी से उसका कोई विरोध है ही नहीं। चौथी पत्नी को उसके साथ कोई भी कैसा व्यवहार करे, लेकिन सबके प्रति वह शांत रूप बनी रहती है। एक बार उसके साथ मिल लो और फिर तुम कहना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे? गिरीश भाई, चौथी के पास ही रहना पड़ेगा, जिसके साथ रहने में आपको क्या मिले, शांति मिले, सुख मिले। एक बार उसके साथ तो रहो, यदि आप अपने बताए नहीं रह रहे हो तो मेरे कहने से तो चले जाओ, एक बार उसके साथ मिल तो लो। लेकिन आपकी आदत खराब हो गई है, इन्हीं तीन पत्नियों के साथ रहते रहते बार बार इन्हीं का ही मुख देखते हैं, इसको यहां बता रहे हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्तानी पुनस्तानी त्वम इच्छसे, जागृत स्वप्न सुसुप्तानी पुनस्तानी त्वम इच्छसे, तुरीयम तव धामेव न तत्किम इति पश्यति। जागृत स्वप्न सुसुप्तानी, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति नाम की जो तीन तुम्हारी स्त्रियों के क्या है, महल है बने, या जो तीन स्त्रियां हैं, बार बार तुम इन्हीं कहते पुनः पुनः बार बार तानि त्वम इच्छसे, तुम बार बार इन्हीं के घर की तरफ देखा करते हो, बार बार इन्हीं की ससुराल होता ना, पत्नी के घर का नाम क्या है, मतलब आपका ससुराल होगा ना, तो बार बार तुम इन्हीं ससुराल में जाया करते हो। किस वाले, कभी जागृत वाले घर में, कभी स्वप्न वाली पत्नी के घर में, कभी सुसुप्ति वाली पत्नी के घर में। हम ससुराल में निवास कर लिए हैं, ऐसी स्थिति हो गई। कहते तुरीयम तव धामेव, अरे तुरीय अवस्था तो तुम्हारा अपना घर है, तुरीय अवस्था तो कौन है, तुम्हारा अपना घर है। न तत् किम पश्यति, तुम उस तुरीय अवस्था को क्यों नहीं देखता है, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं चल जा रही है। अपने घर को तू संभाल नहीं रहा है और दूसरे के घर को संभालने के चक्कर में कभी इस होता ना आजकल, यही स्थिति हो गई है, व्यक्ति अपने घर को संभालता नहीं है और ससुराल के साली साला और वो सब उनके परिवार को संभालना शुरू कर देता है। और जिसकी तीन तीन ससुराल होवे और तीनों ससुरालों को संभाल रहा हो, लेकिन अपने घर को, अपने सगे माँ बाप को उसने क्या किया हो, भुला दिया हो, तो बता उस व्यक्ति को क्या कभी समझदार कहोगे क्या। एक बार उस माँ का यहाँ आता है, यहाँ पे आगे यही आएगा, आपकी दो माताएं हैं, एक उपमाता एक अपनी माता, कौन सी माता, कहते हैं उपमाता है कि अस्तनों में जो दूध है ना, बड़ा कट्टू है, एसिडिटी पैदा करने वाला है, मतलब विकार पैदा करने वाला है, तीखा है, बुरे स्वाद का है, यदि उस दूध को पी लिए ना तो जरा मरण संसर्गी, निर्बलता, अकाल मरण अथवा जीवन में मुक्तता को प्राप्त होगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारी अपनी माता है, कौन जानते ना अपनी माता, ए पराई माता अविद्या हो गई, पराई माता कौन हो गई, अविद्या। और जो निज माता तो तू, या जो तुम्हारी अपनी माता है, अरे उसकी महात्म के विषय में तुमसे क्या कहूं। कहते सायो माता, असली में तो वही तेरी माता है, पिता एव वही पालन करने वाले तेरा पिता ही है, जगताम ईश्वरी चा, वह सारे संसार की मालकिन है, ईश्वरी है, सर्वाधिक पूज्य है। सागति परा, यदि उसके आश्रय में चले जाओगे तो वह तुम्हें परागति को, प्राप्त करवाने वाली है, उससे बढ़कर के दूसरी कोई माता है ही नहीं। जो तुम्हारी कुमाता है ना, कुजाति में पैदा हुई है, अच्छी कोई जाति होती है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारी अपनी माता है वह सुजाति में पैदा हो गई है, हुई है। इसलिए मेरे भाई, तुम उस कुजाति माता को छोड़कर के अपनी सुजाति माता के आश्रय में चले जाओ। एक बार अपनी माता के स्तनों से जो दुग्ध पान कर लोगे, तो वह दुग्ध पान तो अमृत की वर्षा करने वाला है। वह दुग्ध पान क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता रूपी दुग्ध का पान कर लोगे तो अमृत वर्षा है, अमृत को पैदा करने वाली हो जाएगी। जन्म रोग दराध्वंसी, जन्म रोग बुढ़ापे को नष्ट करने वाली हो जाएगी। सकृत पीतो अपी, एक बार भी दीपान कर लिया तो मृत्यु जीतो, मृत्यु को भी तुम जीत जाओगे। लेकिन मूल भाव के कारण तुम अभी तक उसको पहचान पाए ही नहीं हो, है नहीं? अभी कहां अपनी माँ को, असली माँ को कहां पहचान पाए हैं, ठीक है ना? अंतरम एते, दोनों माताओं की पहचान तुम्हारे में। अरे भाई, अब तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए उस कुमाता को छोड़ करके अपनी माता के स्तनों का दूध पान करो। इस तरह से बहुत कुछ बताया। तो कहते हैं कि एक अपनी माता है, लेकिन हम अपनी माता को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और वहां वाली माता को संभालने में सारी जिंदगी लगा देते हैं। कौन सी माता जानते जानते हैं, अपने ही बताऊंगा। अरे भाई, क्यों बोल दिए? चलो, वहां ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि वहां का संबंध सही बता रहा हूं। वहां से ज्यादा अटैच बहुत कर लिए ना, तो आपके घर में विद्रोह पक्का हो जाएगा। इसलिए आप देखना, उसे आप लोग नाराज भले हो जाओ, लेकिन जिस घर में ससुराल का कोई भी बंदा आ गया, चाहे साला हो चाहे जो भी हो, उस घर में बगावत हो ही गई। यदि मामा शकुनी न आए होते कहां हस्तिनापुर में, तो शायद इतना बड़ा बगावत नहीं होता। और उधर मामा माहिल, कौन माहिल, माहिल का नाम नहीं जानते हम लोग, एक आला खंड काव्य है। आला उदल मिलखा ये सब एक क्या है, आला खंड काव्य है, उसमें भी एक चरित्र है। यदि वहां भी वो न आया होता उदल ने, माहिल, मामा माहिल, हाँ, न आया होता, तो वहां भी इतना बड़ा बगावत नहीं होता। तो कहने मतलब उसका नहीं, मतलब ससुराल पक्ष का, किसी के भी ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, एक देखो एक वृत्ति स्वाभाविक भी है। देखो सच बताऊं, आप हमारे शिष्य हो मान लो थोड़ी देर के लिए, अब मैं किसी आश्रम में रहता हूं, अपने आश्रम में रहता हूं, अब मैं कोई भी काम करूंगा ना, तो आपको लगेगा स्वामी जी सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपसे हमसे क्या है, दूसरा महात्मा तो बैठा हुआ है, स्वामी जी थक जाते हैं, लेकिन स्वामी जी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप हमारे कान भरना शुरू कर दोगे। तुम नौकर हो क्या, आप नौकर है क्या, स्वामी चपरासी तरह सारा काम करते रहते हैं, आपको कोई समझता नहीं, मत किया कीजिए आप, दूसरा भी तो करे, क्योंकि आपका जब अपना बंदा आ जाता है ना घर में, चाहे आपकी अपनी माँ हो, चाहे आपका अपना भाई हो, चाहे आपकी अपनी बहन भी हो, आप दो तीन चार लोग रह रहे हो, तो घर में बस भले आप कम काम करो, लेकिन आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को आप ही काम करते दिखाई दोगे, दूसरा व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देगा नहीं। आप गलती भी करोगे, लेकिन आपकी गलती उसको दिखाई नहीं देगी, और दूसरा व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो उसके भी उसमें भी आप गलतियां निकालना शुरू कर दोगे, और वहीं से घर में बगावत होना शुरू हो जाती है। इसलिए भाई, अपनी असली माँ को पहचान जाओ। कौन सी? स्वधामना, जो आपका अपना क्या है, घर ही है। तुरियम तव धाम है, वह तुरी तुम्हारी अपना क्या है, घर ही है। उस घर को तुम संभालो, न तत् किम इत पश्यति। अरे तुम अपने उस घर की तरफ देखते क्यों नहीं हो, तुम्हारी अपनी घर की तरफ दृष्टि क्यों नहीं जा रही है, और तुम दिन रात बार बार दुख सह करके, अशांति उठा करके भी, कामनाओं के वशीभूत होकर के बार बार इन्हीं तीन घरों में क्यों भटकते रहते हो, तुम अपने घर में तो आओ। भाई आप लोगों ने भागवत भी तो पढ़ाई है, भागवत में ये यशोदा मैया क्या करती हैं, हे किसान तेरे घर में दूध की कोई कमी है क्या? अरे जितना दूध पीना हो, जितना मक्खन खाना हो उतना मक्खन खा, बार बार दूसरे घरों में चोरी क्यों करते हो, दूसरे घरों में क्यों जाते हो और दूसरे घर में चोरी करते हो, मक्खन खाते हो, फिर वो औरतें शिकायत लेके आती हैं, तुम्हें भी नीचा मुंह देखना पड़ता है, तुम्हारा कोई कान पकड़ती है, तुम्हें कोई नचाती है, क्या अपने घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन हमें लगता है दूसरे की घर की थाली का स्वाद कुछ ज्यादा ही प्यारा लगता है, अपनी थाली का स्वाद उतना प्यारा लगता नहीं है। इसलिए बार बार 10 तरह के कष्ट सह करके भी हम दिन रात दूसरे के ही घरों में निवास कर रहे हैं, इसलिए बार बार उधर देखना बंद कर दो और अपने आप में जो आपका अपना घर है उधर तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं जा रही? भाई जाओ तो। कहा कि उस घरों में तो सुख दिखता है, अपने घर में सुख दिखता ही नहीं कि दिखता है अपने घर में? वैसे मानो ना मानो, अपने हाथ की बनाई रोटी ज्यादा अच्छी लगती है घर की दूसरी बनाई रोटी अच्छी लगती है? सही बताना, बनाई नहीं क्या? अरे राम रे, सही बताओ, अपने हाथ की बनाई रोटी का स्वाद कुछ विशेष ही होता है। आप बना के कभी देख रहा, भले टेढ़ी मेढ़ी होवे, भले नमक मिर्ची ज्यादा होवे, लेकिन अपने हाथ की बनाई सब्जी, अपने हाथ की बनाई रोटी का स्वाद का पता किसको चलेगा? जो खुद बनाता है उससे ही पूछो। और दूसरे, अच्छा आप ही तो कहते थे अपना कमाया धन ज्यादा सुख देता है या दूसरे का कमाया धन ज्यादा सुख देता है? आप सच बताना, आपका ही शब्द था कि मैं गाड़ी खरीदूंगा तो अपनी कमाई की गाड़ी खरीदूंगा, बाप की कमाई का धन नहीं लूंगा। सड़क पे सोया, स्टेशन पर रहा, ये किया वो किया, लेकिन उनका धन नहीं लिया। तो कहने का भाव क्या है कि अपनी कमाई का जो सुख मिलता है ना, वह सुख तो कुछ न कुछ लाजवाब ही रहता है अपना, और जो पराई की कमाई का सुख होगा उस सुख में उतना सुख मिलता नहीं है। भले आप अरबपति हो जाओ, लेकिन उस अरबपति बनने में कोई आनंद है ही नहीं। इसलिए मेरे भाई तुम अपना सुख तो लो, यहां वहां दूसरे की कमाई की रोटी दूसरे के दरवाजे पर कब तक टुकड़े का, अपने बनाया हुआ झोपड़ी भी सही होता बहुत प्यारी लगती है और दूसरे का बनाया हुआ महल भी बहुत बढ़िया नहीं लगता, फीका लगता है, इसको बता रहे आगे। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, हमें फ्री की खाने की आदत हो गई है, बिना काम किए क्यों भाई, सही गलत बनाए, फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में क्या चाहिए, पानी चाहिए, फ्री में अनाज चाहिए, हमें कोई काम है करना न पड़े। जबकि मैं कहता हूं ये आपको प्रमादी, आलसी और नकारा बना देगा, सारी जिंदगी भर आपको भिखारी बना देगा। आप ऐसा बनो कि हम फ्री में कोई देवे तो भी न लेवे, बल्कि भाई मेरे पास श्रम है, मेहनत करके मैं उसका पेमेंट करके मैं उससे लूंगा, हम फ्री में क्यों खाएं किसी का? लेकिन हमारी भारतीयों की परंपरा क्या होती जा रही है, खराब होती, सही बता रहा है बेचारा। मोदी इसी में हार ही गया दिल्ली में, बताओ फ्री के चक्कर में तो आ रहा है, और क्या सबको फ्री में खाने की क्या हो गई है आदत हो गई, क्या करो, कब तक कौन फ्री में खिलाएगा, कितना खिलाएगा बताओ, सही बताओ। ये मानसिकता को हमें हटानी पड़ेगी। एक ने सीधे कहा तुम्हें एक लैपटॉप फ्री में दे देगा, कितने का, 20,000 का, मात्र 20,000 दिन, अब 5 साल के लिए तुम्हें गुलाम बना लिया, 5 साल वो तुम्हारे ऊपर शासन करेगा, किसके मतलब 20,000 में तुम बिक गए 5 साल के लिए, बताओ अपने आप को, अपनी औकात ही तुमने 20,000 समझ ली, अब 20,000 के लैपटॉप दे करके और वहां का कहा साउथ वाली माई है कौन जललता, वो गैस सिलेंडर दे देगी, चूल्हा दे देगी और मिक्सी दे देगी और सब लोग उसको दे करके 5 साल के लिए हम क्या किए अपने आप को बेच देते हैं। अरे भाई आप कहो मुझे फ्री का अनाज नहीं चाहिए, फ्री की हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें काम दो, हम काम करेंगे और खरीद के खाएंगे, जो रेट सबको देते हो वही रेट क्या करना मुझे देना, मेरे को कोई सस्ता नहीं चाहिए माल, लेकिन हमारे पास इतनी सामर्थ्य हो कि हम खरीद, इतनी सामर्थ्य हमें दे दो कि कि हम फ्री की खाने की हम आदत छोड़ करके खरीद के खाना सीखें, और जब तक खरीद के खाना सीखोगे नहीं, कमा के खाना नहीं सीखोगे, तब तक जीवन में आपका विकास कभी हो ही नहीं सकता है। अरे मैंने गुजरात में देखा, सही बता रहा हूं, गुजरात में थोड़ा हमें भिखारी कम दिखे, पंजाबियों में सरदार को कभी देखा है भिक्षा मांगते हुए? कभी भी देखो सरदार लोग भिक्षा मांगते हुए नहीं दिखेंगे सरदार, लेकिन बहुत कम देखा होगा। हाँ, सरदारों को हमने बहुत कम देखा है। वो वही तो मैं कर रहा हूं ना, भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा मैं, ये कर रहा हूं ना, ये सब लोग मेहनत करके खाते हैं, भले टैक्सी चला रहे हैं, भले एक दुकान कोई खोल दिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक जाति क्या कर रही है, मेहनत करके कमा के खाना पसंद करती है, भिक्षा लेके खाना पसंद नहीं करती है। और इसको भिक्षा लेके खाने की आदत बन गई ना, तो फिर जिंदगी भर कभी मेहनत कर ही नहीं सकता है। इसलिए भाई, तुम सुख के लिए दूसरे के अधीन न हो, सुख तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, इसको बता रहे बारहवें श्लोक में। माधाव सुख हे तोस्तम धावताम न सुखम सखे, सुख रूपे निजे रूप सुखम तिष्ठ सुखी भव। माधाव सुख हे तो मत दौड़ो, किसके लिए? सुख के लिए। तुम हे सखे, हे मेरे मित्र, तुम सुख के लिए कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी यहां, कभी कुल्लू मनाली, कभी गोवा, कभी स्विट्जरलैंड, और इतना ही नहीं, कभी तीर्थों में भी, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी काशी, हर व्यक्ति देखना आपके भीतर जैसी वासनाएं होती हैं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए तो हम वहां जाते हैं, जिसको जैसे संस्कार होते हैं उस संस्कार के अनुसार विषय मिल जाते हैं तो आपको क्या हो जाती है, प्रसन्नता होती है। आपका गोवा जाने में प्रसन्नता होती है। मैं भी एक बार एक मित्र के साथ, हमारे मित्र का एक आश्रम में गोवा गया, मुझे तो वहां ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, सही बता रहे, मुझे कुछ दिखा नहीं, लोग क्यों जाते हैं नहीं समझ पा रहा, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही किसी को किसी स्थान में जाने का शौक है, तो मनोनुकूल विषयों की प्राप्ति में जो तुम्हें सुख दिखता है, उस सुख के लिए तुम यहां वहां मत दोगे मेरे मित्र, न सुखम तत्र, उन विषयों में तुम्हें सुख है ही नहीं, न हो तो अजमा के देख लेना। जहां आपको सुख दिखता है, पांच दिन दस दिन तो सुख दिखेगा, और उसी स्थान पे जहां सुख दिख रहा है, महीने रह जाओ, दो महीने रह जाओ, देखो भागना चाहोगे, जल्दी भागो, इस स्थान में कोई सुख है ही नहीं। दूर से देखो तो पहाड़ बड़े सुंदर दिखते हैं, नहीं दिखते? और जो पहाड़ में ही पैदा हुए हैं, अब पहाड़ में ही रहते हैं, उनसे पूछो, जब उनकी नौकरी बम्बई अथवा लखनऊ में लगती है ना, अब गवर्नमेंट कहती है अब उत्तराखंड अलग राज्य हो गया है, तुम यहां से ट्रांसफर करा करके उत्तराखंड जा सकते हो, लेकिन पहाड़ से मैदान में आया हुआ कोई व्यक्ति लौट करके दोबारा उत्तराखंड जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां रह करके वहां के सुख को उसने अच्छी तरह से देख लिया है। आप चार दिन के लिए जाते हो, वाह बड़ा क्या सुंदर पहाड़ है, क्या सुंदर झरना है, क्या सुंदर ये है, हाँ, आपको लगता है, हम भी चार दिन आपके घर जाते हैं ना, महाराज जी क्या सुंदर घर है, समुद्र की लहरें गिनते रहो, खड़े रहो, और जो समुद्र के किनारे रह रहा है ना, वो खिड़की ही खोलता, पर्दा ही बंद किए रहता, कभी झांकता भी नहीं है, समुद्र की लहरें है भी कि नहीं है, चल रहा कि नहीं चल रहा है, कि देखते हैं आप लोग तब, लेकिन दूर से देखो तो बहुत सुंदर लगता है। इसलिए भाई मत दौड़ो यहां वहां, दौड़ने में सुख नहीं है, सुख रूपे निजे रूपे, सुख तो तुम्हारा अपना क्या है, स्वरूप ही है, अपने उस स्वरूप में ही सुखम तिष्ठ। सारी दौड़ को, मानसिक दौड़ को, शारीरिक दौड़ को छोड़ करके सुखम तिष्ठ, सुख से बैठ क्यों नहीं जाते हो, बैठते हुए अच्छा नहीं लगता क्या? असुखी भव, असुख से अपने आप में बैठ करके तुम सुखी हो जाओ, क्योंकि जब तक दौड़ते रहोगे तब तक तुम्हें शांति ये किसी कवि का है ना श्लोक, ये कई बार मैं आपको सुनाया भी हूं। दौड़े दौड़े दौड़िया जब लग मन की दौड़, दौड़ मिट्टी मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। उस वस्तु को, उस परमात्मा को, सुख को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता, एक कदम भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सुख तो अपना स्वरूप ही है और उस सुख को आप लोग रोज सुसुप्ति में, गहरी नींद में अनुभव भी करते हो, क्योंकि वहां आपकी जीवन की सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। तो भाई जब सुख का अनुभव कर लिया अपने आप में बैठ करके, फिर यहां वहां कहां सुख की तलाश में, सुख की अपेक्षा में तुम भटक रहे हो। तो हम लोगों ने यही निश्चय किया कि अब क्या करें, सुख को पाने के लिए कहां बैठना है, अपने आप में बैठना है। इस तरह से 12 श्लोकों तक चर्चा पूरी ज्ञान की हो गई। लेकिन कब बैठे, ये भी बड़ी मुश्किल है, कब बैठना है। पहले कुछ दिन धक्के खा ले तो बैठ जाए, या बैठने की उम्र हो गई, कभी नहीं उम्र हो गई है, कहां उम्र हो गई, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम दौड़ ले में, तो वही कहते हैं आगे। अब इस कब करें ये सब समझा रहे हैं। बर योग्या असि कल्याणी न स्थास्यति वरम बिना, बरंगयो बरस्ताद्रिक यो भवेत अजरा अमर। हे कल्याणी, बर योग्या असि, अब तुम बर को ढूंढने योग्य, बर के योग्य हो गई हो, अब तुम शादी के योग्य हो गई हो। शादी माने बर माने कौन है, बर माने वर किसको बोलते हैं, श्रेष्ठ। वर माने क्या हुआ, श्रेष्ठ। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म है। सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म है। तो हे देवी, अब तू बर के पाने योग्य हो गई हो, बर माने अब ब्रह्म के पाने योग्य हो गई हो। अब तेरी, अरे भाई प्रेमपुरी में आते आते 20-22-25 साल हो गए, अब तो हम पूरे पूरे जवान हो गए, नहीं जवान हो गए, हमारी अंतःकरण, हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हो गई है कि अब इस ब्रह्म विद्या को अपने भीतर रखने में समर्थ हो गई है। बर योग्या ऐसी कल्याणी, हे कल्याणी, अब तू बर के पाने योग्य हो गई हो, ब्रह्म विद्या के पाने योग्य हो गई है। न स्थास्यति वरम बिना, अब तुम बर के बिना, उस दूल्हे के बिना अब तुम रखने में समर्थ हो नहीं, अब क्योंकि ब्रह्म भाव को प्राप्त किए बिना अब तुम रह नहीं सकती हो। क्योंकि देखो बचपना 18 साल 17 साल पढ़ने लिखने में यहां वहां ऐसे बीत जाते हैं, उसको किसी पुरुष की तलाश होती नहीं है। आज जैसे वह लड़की जवान हो जाती है, उस लड़की के मन में कामना पैदा हो जाती है, किसकी, अब संसार की सारी कामनाएं छूट जाती हैं, अब उसके मन में चिंतन किसका चलता है, पति की, चलता नहीं चलता एक उम्र के बाद। ऐसे आप लोग को भी प्रेमपुरी में आते आते, प्रेमपुरी का हवा, सत्संग सुनते सुनते आपकी बुद्धि क्या हो गई है, पूरी परिपक्व जवान हो गई है, अब संसार के विषयों का आकर्षण आपका समाप्त हो गया है। जैसे छोटी लड़की खेलने कूदने यहां वहां लगी रहती है, अब उसको उस पति के लिए कोई चिंता रहती नहीं है, लेकिन अब आपकी भी संसार के विषयों में, भोगों में जाने की प्रवृत्ति अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अब आपको भी किसी न किसी बर की तलाश है, लेकिन वह बर कौन होवे, कहते बरंगियो बरह ताद्रिक, उस प्रकार का ही बर चुनने के योग्य है जो, यो माने यो भवेत अजरा अमर, जो अजर अवर अमर होवे। ऐसे मरने वाले पतियों को चुन करके भी तुम क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। अब मरने वाले पति कौन है, ये संसार के विषय, संसार के विषय क्या है, अभी पैदा होते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं, क्षीण होते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। कैसे सांसारिक सुख के पदार्थ का चुनाव करना अब हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, अब मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो पति कैसा होवे, अजर और अमर होवे, जरा और मरण से सर्वथा रहित होवे। जिस पति के प्राप्त होने के बाद, जिस पति के प्राप्त होने के बाद दूसरे शरीर के मिलने का प्रसंग ही समाप्त हो जाए। ऐसे आत्मस्वरूप रूपी वर को ही प्राप्त करो और संसार के इन विषयों की आसक्ति को संसार के विषयों के साथ बहुत क्रमण कर लिया, उनसे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अब हमें उसी ही पति की तलाश है। कौन सा पति? ब्रह्म है, आत्मरूपी पति जो आपका अपना है। न सुरोसु बरम यावत तावते कंपते मन पश्चात महोत्सई भद्रे स्वामिनम त्वं वरिष्यसि। हे भद्रे, हे कल्याणी, गुरु शिष्य को समझाते हुए कह रहा है, न सुरोसी बरम यावत, जब तक उस श्रेष्ठ पति कौन है? परमेश्वर। जब तक श्रेष्ठ पति के न सुरोसी बरम यावत, जब तक उस श्रेष्ठ पति के गुणों की चर्चा को तुम सुन नहीं लेती हो, उसके साथ मिलने का जो आनंद है, उस आनंद के बारे में जब तक तुम जान नहीं लेते हो, तब तक ही तावत ते कंपते मन है, तब तक तेरा मन कंपायमान हो रहा है, कभी इस विषय में, कभी उस विषय में, कभी उस विषय में, कभी इस विषय में, तमाम तरह से भटक रहा है। लेकिन उस पति के मिलन से मिलने वाला जब सुख है, उस सुख के बारे में तुम सुनोगी, जानोगी, तो तेरे मन का सारा चंचलता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जैसे भागवत की कथा सुनी है आपने, रुक्मिणी के पिताजी के यहां ऋषि मुनि आते थे, क्या नाम था रुक्मिणी के पिताजी का नाम? तेज बोलो। भीष्मक, उनका भाई तो रुक्मी था। भीष्मक के यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे और किसकी चर्चा करते थे? कृष्ण की चर्चा करते थे। कृष्ण इतना योग्य है, दयालु है, कृपालु है, व्यापक है, ब्रह्म है, बहुत चर्चा करते थे। किसकी? कृष्ण की। रुक्मिणी ने कभी देखा था क्या? कभी मिला था क्या? लेकिन भगवान के ही गुणों की चर्चा सुन करके रुक्मिणी का प्यार किससे हो गया? उस भगवान से हो गया कि नहीं हो गया? अब घर वाले उसका विवाह करना चाहते हैं किससे? के साथ है? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल माने जानते न, शिशु को पालने पोसने में जो कौन हो, माहिर होवे। हम भी अपनी लड़की का विवाह खोजने जाते हैं तो कौन सा पति चाहिए? पैसे वाला हो, शिशुपाल चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखा सके, पत्नी को सुखपूर्वक रख सके, उसको तमाम भोग की सामग्री दे सके, उसको घुमा टहला सके, अच्छे कपड़े पहना सके। हम संसार के भोग को प्रदान करने वाले ही तो पति की तलाश करते हैं, किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। लेकिन रुक्मिणी ने सुना, श्रवण किया, किसकी चर्चा सुना? कृष्ण की चर्चा सुना। एक बार कृष्ण के मिलन की चर्चा को सुन करके उसके मन में ऐसी प्यास जगी कि कृष्ण के अलावा हमें दुनिया का कोई बर चाहिए ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण माने कोई शरीर नहीं, कृष्ण माने कौन है? वह आत्मा। उस आत्मा के मिलन के सुख का यदि कोई चर्चा कर देवे तो व्यक्ति के मन में उससे मिलने की एक उत्कंठा जग जाती है, और उत्कंठा जग जाती है फिर उसका मन संसार के किसी विषय भोग में कभी भी भूल करके भटकता है ही नहीं। ऐसी चर्चा एक जगह नहीं है, कई जगहों पे आती है। हमारे नारद जी महाराज ने शिव की चर्चा किससे किया? पार्वती से किया। अब पार्वती ने उस शिव को पाने के लिए क्या किया? तप करना शुरू किया। अब उस शिव पाने का लक्ष्य था, लेकिन उस लक्ष्य से भटकाने के लिए सप्तऋषि आए। कौन आए? अरे कहां उस शिव के चक्कर में पड़ रही हो, जो गुणातीत है, जिसमें गुण नाम के कोई चीज है ही नहीं, शमशान में रहता है। शमशान में शम का बहुत अर्थ है, शमशान में रहता है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं देगा, तुम तो इंद्र से विवाह कर लो, इससे विवाह कर लो, इससे विवाह कर लो। पार्वती ने एक दो टूक किया, बरऊ तो शंभु न तरहऊ कुमारी। चुनाव तो एक का ही करना है, किसका? शंभु माने उस आत्मा का ही, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन कभी विषय के साथ अब विवाह करेंगे नहीं। भाई तुम्हें विवाह कराने का बड़ा शौक है, आज की भाषा में मैरिज बैरो ना खोलने का बड़ा ही शौक है, तो दुनिया में बड़े कुंवारे लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, तुम उनका विवाह करा दो ना उन विषयों के साथ, उनको उन विषयों की चाह भी है, उन विषयों को पाने के लिए वो तड़प भी रहे हैं, लेकिन मेरे को उन विषयों के लिए कोई तड़प है ही नहीं। मुझे यदि तड़प है तो एकमात्र किसकी, उस परमात्मा की है। इसलिए हमारा मन में अभी लक्ष्य सही बताऊं पक्का बना नहीं है, इसलिए मेरा मन भटकता है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, सब जगह भटकता है, भटकता रहता है। कब तक भटक रहा है, जब तक उस परमात्मा के महात्म का, परमात्मा के मिलन से होने वाले सुख का हमने स्मरण नहीं किया है। पश्चात यदि एक बार उस परमात्मा के मिलन के सुख का स्मरण भी कर लो तो बहुत सही, उसके साथ मिलने में जो महाउत्सव होगा, महाउत्सव के द्वारा जैसे शादी करते हो ना तो खूब धूमधाम से बरात ले जाते हो, तो महाउत्सव के द्वारा स्वामिनम तुम वरिष्यसी, उस महोत्सव के द्वारा तुम उसका वरन अपने आप ही कर लोगे, उसके गले में जयमाला तुम अपने आप ही डाल दोगे, तुम्हें फिर कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार उसको तुम क्या करो, श्रवण कर लो। तू परेण पुरुषेणाद्य रमस्व वचनात्मम सखी पश्चात स्वतः चित्तम कुर्यत्राधिकम सुखम। अब फिर भी गुरु लाख समझाता है शिष्य को, एक बार तुझसे मिल लो, एक बार तो उसके साथ रमण के सुख को ले लो, लेकिन शिष्य को भरोसा गुरु की बातों में हो ही नहीं रहा है। तो क्या कर रहे हैं, परेण पुरुषेण अद्य, परेण माने दूसरा पुरुष, दूसरा नहीं उस उत्कृष्ट, पर माने क्या हुआ, उस उत्कृष्ट पुरुष के साथ वचनात्मम मेरी बात पर विश्वास करके रमस्व, एक बार रमण तो कर लो बस, एक बार उससे मिल तो जाओ, मेरी बात सुन करके एक बार उसके साथ संबंध तो बना लो। हे सखी पश्चात बाद में स्वतः चित्तम कुरु यत्र अधिकम सुख, फिर तूने संसार के विषयों को भी खूब भोगा है, बताए ना तीन पत्नियों के साथ जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के साथ खूब रह चुके हो, इनके साथ रहने का बड़ा अभ्यास भी तुम्हारा हो चुका है, एक बार जो तुम्हारी अपनी चौथी है तुरीय पद है, उस तुरीय पद के साथ मिल तो लो, मिलने के बाद तुम्हें जो सुख मिलेगा उस सुख की और अभी तक जो सुख भोगे हो उन सुखों की आपस में क्या करना, तुलना करना, और तुलना करके यत्र अधिकम सुखम जहां तुम्हें अधिक सुख की प्राप्ति होवे फिर तुम वहां चली जाना, मैं तुम्हें बाध नहीं करता कि इसी के साथ रहो या उसके साथ रहो। देखो शास्त्र कभी आपको किसी भी रास्ते पे चलने के लिए तुम ऐसा ही करो बाध्य करता ही नहीं है, आपको दोनों रास्ते दिखा देता है, और दो एक भोग का अनुभव तो मुझे अपना है ही, लेकिन दूसरे भोग का अनुभव हो नहीं रहा है, तो एक बार गुरु के कहे के अनुसार उस चौथे पद के प्रति प्रवर्तित तो हो। देखोगे संसार के विषय भोगों में अल्पकाल के लिए सुख तो मिलता है, लेकिन सारा जीवन वही बताने विषय इंद्रियों और योगे प्रबोध सुधाकर में, विषयों का इंद्रियों के साथ योग होने पर सुख थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन दुख यावत जीवन, जितना जीवन है व्यक्ति को दुख ही दुख उठाना पड़ता है। उस परमात्मा के साथ मिलन के लिए ठीक है संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार के छोड़ने में दुख तो थोड़ा उठाना पड़ा, थोड़ा अपनी अंतःकरण की वृत्ति को संसार के विषयों से हटा करके एकाग्र करके उस परमात्मा से जोड़ना पड़ा, लेकिन जोड़ने के बाद जो सुख मिलता है वह सुख अनंत होता है, असीमित होता है। तो भाई तुम अपने ही द्वारा विचार करके निश्चय कर लो कि सुख तुम्हें कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है। तो हमें किसके साथ मिलना है, तुरी के साथ, कब, अभी कुंवारापन चला गया तो अभी बुढ़ापे में शादी करोगे क्या? गांव घरों में लोग कहते हैं लड़की जब 18-25 की हो जाती है, भैया शादी करना हो, यही शादी करने की उम्र है, 30-35-40 की हो गई तो क्या शादी करोगे, अब तो उम्र क्या हो गई, चल गई। इसी के यहां बताते हैं, यातम दिनम न पुनरेति नवम वयस्ते लज्जाम विहाय भजतम रमणीय रूपम वाले परह पुरुष एस यदा समेत स्वर्गे किम किमु तदानी सुखे नवाते। हे बाले, हे बच्ची, यातम दिनम न पुनः एति, जो दिन बीत जाता है वह दिन दोबारा लौट करके आएगा है ही नहीं। सही बताऊं, हम तो कहते हैं मनुष्य जन्म भी मिला हुआ है, यदि ये हूं बीत गया तो दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। बड़ा कालाधीन स्वामी मोहनानंद महाराज कहते हैं, अभी तो चलो गनीमत है, हम मनुष्य हैं, अगले जन्म में कहीं सींग और पूंछ वाले मम्मी डैडी हो गए तो प्रेमपुरी में आने नहीं देंगे लोग, क्या नहीं देंगे भाई, नहीं आने देंगे। इसलिए जो अवसर मिला हुआ है वह अवसर यदि हाथ से निकल गया तो दोबारा अवसर मिलने वाला है ही नहीं। नवम वयस्ते, अभी तेरी उम्र भी क्या है, नई उम्र है, अभी क्या है, नई उम्र है। जाति कुल धर्म का अभिमान बहुत ज्यादा है ही नहीं, तब इस नई उम्र में न यदि पक्का उस परमात्मा से मिलन हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। एक बार संसार के विषय भोगों में रमण करके फिर यदि जाओगे वहां तो बीच बीच में तुम्हें संसार की याद खींचती ही रहेगी, अब फिर पूरी तरह से वहां तुम रह पाओगे नहीं, फिर से नीचे पतित हो जाओगे। इसलिए मेरी बात सुनो, लज्जाम विहाय भज तम रमणीय रूपम, ये सारी लोक लज्जाओं को क्या कर दो, छोड़ दो। संसार वाले, जाति वाले, कुल वाले, यह सब क्या करेंगे, इनको छोड़ दो। अब भज तम रमणीय रूपम, उस सुंदर से सुंदर, पवित्र से पवित्र रूप उस परमात्मा का तुम भजन करो। बाले परह पुरुष एस यदा समेतम, हे बाले, पर पुरुष, पर माने उत्कृष्ट है पुरुष, परह पुरुष उत्कृष्ट पुरुष जो है उसके साथ जब तुम एक हो जाओगी, एक बार तुम मिल जाएगी तो स्वर्गेण किम, स्वर्ग का सुख तेरे लिए दो कौड़ी का हो जाएगा, स्वर्ग के सुख की कोई कीमत रही नहीं जाएगी। तदा उसी प्रकार से नृ सुखे न वाते, ये मनुष्य का भी सुख क्या सुख है, यह भी यह तेरे लिए तो किसी कोने में टिकेगा ही नहीं, सब के सब नष्ट प्राय सा हो जाएगा। अंदर सुख जानते ना कौन सा सुख होता है, सार भौम सम्राट होवे, पूरी पृथ्वी का क्या होवे, मालिक होवे, आज्ञाकारी पत्नी होवे, पुत्र भी आज्ञाकारी होवे, नौकर चाकर भी क्या होवे, आज्ञाकारी होवे, पूरी धन संपत्ति से युक्त होवे, शरीर क्या होवे, स्वस्थ होवे, उम्र क्या होवे, 18-20-22 साल होवे, उस मनुष्य का सुख एक सुख माना जाता है, यह सुख भी दो कौड़ी का सुख हो जाएगा। इसलिए हे सखी, एक बार उस श्रेष्ठ पुरुष के साथ मिल तो लो, सारी लज्जाओं को, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, व्यक्ति क्या कहेगा, इसको छोड़ दो, क्योंकि जो उम्र आई है यदि वह उम्र बीत गई और फिर तुम साधना करना भी चाहो तो सही बताऊं साधना कर नहीं सकते, और नई नई उम्र में ही साधना होती है, क्योंकि विषय के संस्कारों से अंतःकरण दूषित हो गया तब हम बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके उसी विषय की तरफ देखेंगे और जो श्रेष्ठ पुरुष है उसकी हम उपेक्षा कर डालेंगे। इस तरह से 16 श्लोक क्या हुए, भाग दौड़ करके हमने पूरे कर लिए। प्रेमपुरी आश्रम और यहां के सभी व्यवस्थापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो एक बताएं, इनका अपनापन है, सच बताऊं। एक ने कहा कि महाराज जी दुख के समय में, आपत्ति के समय में लोग आपको फोन करते हैं, ऐसा मैसेज आया, तो ये न समझा करो कि वो दुख के समय मेरे को फोन करते हैं, बल्कि ये समझो कि उनका अपना फन है कि उस घड़ी में वो आपको याद करते हैं। सही है। तो प्रेमपुरी आश्रम मुझे अपना एक समझता है, सही बताऊं। इसके कारण जब भी आवश्यकता प्रेमपुरी को पड़ती है तुरंत ये लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ऐसी याद का ही परिणाम रहा कि पिछली बार देखो फरवरी में स्वाध्याय हुआ, पिछले वर्ष से कब स्वाध्याय हुआ, फरवरी में स्वाध्याय हुआ, फिर 16 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रवचन हुआ, पहले स्वाध्याय फिर क्या हुआ 6 महीने के बाद प्रवचन, फिर 3 दिन के लिए महाराज जी चले गए बाहर, तो 3 दिन के लिए नवंबर में आया, फिर 16 से 30 नवंबर स्वामी जगदीशपुरी जी नहीं आए, उनकी जगह आया। तो पिछली बार तो कितनी बार हो गया, 2-3-4 बार तात्कालिक होता रहा, तो इस बार भी देखो स्वाध्याय चल ही रहा है नहीं, और 4 दिन का क्या हो गया, एक तात्कालिक एक विषय रूपी प्रवचन भी आपको मिल गया, इसका भी एक फायदा हो गया। और शायद 14 मार्च से 31 मार्च तक आपको फिर प्रवचन भी मिलेगा प्रबोध सुधाकर। तो प्रेमपुरी का अपनापन भी होता है कि जब भाई देखो जिसके प्रति अपनापन भाव होता है ना उसी को उठा खड़ा कर देता है, भाई ये बोलना है, करना है, इसमें आदेश नहीं है, ये उसका अपनापन है। तो आप सबका भी अपनापन है, आप सब भगवान आप सबको भी वही चौथा पति मिले, मैं यही प्रयास करता हूँ जिससे आपको परम शांति की उपलब्धि होवे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।